वे भगवान उवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। अनुवाद को दोहराइएगा। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितम् तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण को कई प्रश्न करते हैं और भगवान कृष्ण पूरी तरह से अर्जुन के समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके संशय दूर कर देते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से वो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये भगवद गीता कोई साधारण प्रश्नोत्तर नहीं है, साधारण संवाद नहीं है। ये संवाद असाधारण है, क्योंकि इसका विषय है दिव्य है, अलौकिक है। अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। इसके पहले ही अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछ चुके हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर ही श्रृण्वतो नास्ति मे मृतम। कि हे कृष्ण, मैं आपके दिव्य ऐश्वर्यों के बारे में और भी सुनना चाहता हूं। आपके कौन से अलग अलग प्रकार के रूप हैं, आपके कौन से अलग अलग ऐश्वर्य हैं, मैं इनके बारे में सुनना चाहता हूं और भी ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता हूं। इतना सब सुनने पर भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। तृप्तर ही शृण्वतो न अस्ति मे अमृतम। ये जो आप अपने शक्तियों का, अपने दिव्य रूप का वगैरह वर्णन कर रहे हैं, ये मेरे कानों के लिए अमृत के समान है और मैं ये अमृत का पान करते रहना चाहता हूं। इसलिए इसको बंद मत कीजिए, इसे और बताते जाइए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में नैमिषारण्य में एकत्र हुए सारे ऋषि मुनिगण जो थे, वो भी श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता सूत गोस्वामी से कहते हैं, वयम तु न वित्तप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप भगवान श्री कृष्ण उत्तम श्लोक, इनके गुणों का, इनके लीलाओं का, इनके रूप का इत्यादि वर्णन करते जाइए। ऐसे वर्णन से हम थक नहीं जाएंगे। जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वो ऐसे वर्णन से अमृत का पान करते हैं और जैसे वर्णन बढ़ता रहता है, उनको अधिक से अधिक रस प्राप्त होता है। जब हमारे हृदय में कृष्ण कथा के प्रति रस नहीं प्राप्त होता, जब हम कृष्ण कथा में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, और खास करके जब दोपहर का समय होता है और हम बाहर धूप से आए हुए होते हैं तो थकावट होती है, तो आसानी से सो जाते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को कृष्ण कथा में रुचि हो जाती है वो कहते हैं कि आप बोलते रहिए, हमें नींद की परवाह नहीं, भूख की परवाह नहीं, प्यास की परवाह नहीं, हमें केवल कृष्ण कथा के अमृत का पान करते रहना है। इसलिए ऋषि मुनिगण नैमिष शरण में सूत गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि हम थके हुए नहीं हैं, हालांकि हम इतने समय से यज्ञ वगैरह कर रहे हैं लेकिन हम थके नहीं हैं, आप बोलते जाइए। तो ये है विशेषता भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की। गीता के इसी 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। वो कहते हैं कि मेरे भक्त वो हमेशा मुझे उनके हृदय में निवास करा लेते हैं और हमेशा मेरे बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं। परस्परम और आपस में क्या करते हैं, कथयन्तश्चामि, कि वो कथा करते हैं मेरे बारे में। बार बार एक ही विषय होता है, वह है भगवान का विषय। तो जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी मिलते हैं तो हमेशा कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं, या कृष्ण के सेवा के बारे में चर्चा करते हैं, या कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जब श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग में आगे प्रगति करना चाहते हैं तो हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम इधर उधर की बातें न करें, हमारा समय व्यर्थ न गवाएं। और हम जब आपस में मिलते हैं तो केवल काम की बातें करनी चाहिए, अर्थात भक्ति के बारे में कृष्ण की बातें करनी चाहिए, संसारी बातों में ज्यादा समय हमें व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। तो जब भगवान के भक्त मिलकर कृष्ण की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो जब परम भक्त अर्जुन स्वयं कृष्ण के साथ बात कर रहे हैं तो वो भी तो भक्ति के बारे में ही बात करेंगे, वो भी तो कृष्ण के बारे में ही बात करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवद गीता का मूल विषय है कर्म, कि तुम कर्म करते रहो, या कोई कहते हैं कि भगवद गीता का मूल विषय है ध्यान करना, अष्टांग योग, हठ योग करना। तो ये अलग अलग बातें अलग अलग वक्ता या ये जो टीकाकार है वो करते हैं, लेकिन देखिए कितनी सीधी साधारण बात है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि जब दो भक्त मिलते हैं तो कृष्ण की बात और भक्ति की बात करते हैं। तो जब परम भक्त अर्जुन स्वयं कृष्ण के साथ बात कर रहे होते हैं तो भक्ति के अलावा और क्या चर्चा हो सकती है। जब दो भक्त ही भक्ति के बारे में बात करेंगे, जो कृष्ण और अर्जुन बात करेंगे, तो भक्ति के अलावा कैसे किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भगवद गीता का मूल विशेष, मूल जो विषय है, जो सिद्धांत है, वो केवल भक्ति है और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्ति में क्या होता है, भक्त भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। इसलिए यहां पर अर्जुन कृष्ण के शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहते हैं, और कृष्ण से बोल रहे हैं कि आप बोलते जाइए बोलते जाइए, आपका जो वर्णन है वो मेरे कानों में अमृत के समान लग रहा है। और उस समय कृष्ण क्या उत्तर दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो अर्जुन कहते, कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मेरे ऐश्वर्यों के बारे में सुनना है तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन ये जान लो कि मेरे ऐश्वर्यों की सीमा नहीं है। जितना भी मेरे ऐश्वर्यों के का वर्णन मैं करता रहूं, वर्णन समाप्त नहीं हो जाएगा। बताया जाता है कि अनंत शेष, जिनके फणों के ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, ये अनंत शेष जिनके लाखों करोड़ फण होते हैं, इन सारे सारे मुखों से, मुखारविंदों से अनादि काल से वो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते आए हैं, लेकिन अभी तक उनका वर्णन समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कृष्ण के गुण, कृष्ण के ऐश्वर्य, कृष्ण के वैभव अनंत है, क्योंकि कृष्ण अनंत है तो उनके गुण भी अनंत है, उनके भक्त भी अनंत है, उनकी महिमा भी असीमित है। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारी इच्छा है कि मेरे ऐश्वर्य के बारे में सुनना, तो ठीक है मैं सुनाऊंगा, लेकिन ये जान लो कि मेरे ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। और इसी अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावकच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं, जो भी तुम बड़े शानदार चीजों देखोगे, श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा, श्रीमद् मतलब बहुत सुंदर चीज, ऊर्जितम् मतलब बहुत शानदार तेजस्वी चीज, जो भी ऐसे वस्तु आप ये संसार में देखोगे, आप ये समझ लेना मम तेज अंशः संभव, कि ये सारे सौंदर्य जो है ये केवल मेरे तेज का, मेरे ऐश्वर्य का एक कण मात्र अंश है। तो हम संसार में कितने सारे सुंदर चीजें देखते हैं, अब बाहर जाते हैं, सुंदर पहाड़ हैं, सुंदर बगीचे हैं, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, आकाश, सूर्योदय का समय कितना सुंदर होता है, सूर्यास्त का समय भी कितना सुंदर होता है, और कितने बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली तेजस्वी हम चीजें देखते हैं। जैसे आप अगर समुंदर के बीच में जाएं जहाज पर, तो कितना विशाल लगता है समुंदर, और समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो इतना विशाल लगता है समुंदर। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी कुछ सुंदर वस्तु, ऐश्वर्यशाली वस्तु, तेजस्वी वस्तु, कोई शानदार वस्तु आप देखते हो हे अर्जुन, तो ये अच्छी तरह से समझ लो कि ये केवल मेरे ऐश्वर्य और तेज का एक कण मात्र अंश है। और फिर आगे चल के कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं आप तुम्हें बताते रहूंगा कि कहां तक बताऊंगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए तुम जान लो एकांशेन स्थितो जगत, कि ये मेरे एक अंश से ये सारे ब्रह्मांडों को मैं धारण कर रहा हूं। तो समझ समझ कर भी कितना समझोगे अर्जुन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी जो शक्तियां हैं, मेरे ऐश्वर्य, मेरे तेज, मेरी महिमा का पूरी तरह से समझना असंभव है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हम इस बात को समझते नहीं है कि भगवान को हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, उनके ऐश्वर्यों को समझ नहीं सकते, तो हम आध्यात्मिक जीवन में या सत्य को समझने के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वास्तव में कोई भी बद्ध व्यक्ति ये कभी भी समझ नहीं सकता है कि भगवान के ऐश्वर्य कितने विशाल हैं, कितने अद्भुत हैं, ये अनंत जो शक्तियां हैं ये कैसे काम कर रही हैं, और ये अनंत शक्तियां एक दूसरे के को इसके साथ मिलकर कैसे भगवान श्री कृष्ण के इच्छाओं को पूर्ण कर रही हैं, और कैसे ये संभव है कि अलग अलग शक्तियां जिनको ऐसे लगता है कि विरोधाभास हो रहा है, ये कृष्ण में सम्मिलित हैं, कैसे हो सकता है, तो ये हमें समझना असंभव है। अगर कृष्ण के शक्तियों को ही समझना असंभव है तो कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को शक्तियां, किसी व्यक्ति के शक्तियों को समझना अगर मुश्किल है तो उस व्यक्ति को कहां से समझेंगे। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है, न कार्यम कारणम च विद्यते, कि भगवान श्री कृष्ण भगवान जो है उनके लिए कोई कार्य नहीं है करने के लिए, कोई कर्तव्य नहीं होता है। न तत् शम चाभिद कश्य दृश्यते, कोई उनके समान नहीं है, कोई उनके परे नहीं है। परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाविक ज्ञान बल क्रियाच, कि भगवान श्री कृष्ण के परह, परह मतलब भगवान, विविधैव शक्ति ही, विविध प्रकार की शक्तियां उनके हैं, अनंत कोटि शक्तियां उनके हैं, और ये सारे शक्तियां भगवान के हैं, स्वाभाविक तौर से उनकी सहायता करते हैं। अर्थात भगवान को कोई अलग से चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती है, कि मैं कुछ कष्ट करूंगा तब मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, नहीं। भगवान जो भी इच्छा करते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी अनंत कोटि शक्तियां उनके सेवा के लिए हाजिर होती हैं। क्या चाहिए आपको? तुरंत आपकी सेवा में हम हैं, आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। जैसे कोई राजा होता है तो उनके सामने हमेशा बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। जिस समय राजा के मन में थोड़ी भी इच्छा हुई, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, तुरंत कोई ना कोई 10-15 नौकर हाजिर होते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति, मनुष्य के लिए अगर यह संभव है कम मात्रा में, तो भगवान के लिए क्यों नहीं संभव है? तो भगवान श्री कृष्ण की ये सारे अनंत कोटि शक्तियां जो हैं, ये हमेशा उनके साथ देती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं, और हर क्षण ये शक्तियां भगवान के नियंत्रण में रहती हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें श्रद्धा चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य मतलब जो हमारे कल्पना के बाहर है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जहां तक हमारी बुद्धि, जहां तक हमारा मन हमें अवसर देता है, उस हद तक, उस सीमा तक तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जीव गोस्वामी हमारे आचार्य परंपरा में बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, तब तक वो भगवान को समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए श्रद्धा। किसी व्यक्ति में अगर श्रद्धा नहीं हो और हर बात वो तर्क पे निकल आए कि ये तर्क से हमें समझाइए कि ये ऐसा कैसा, भगवान ऐसा कैसे करते हैं, तो फिर कभी भी वो सत्य को, भगवान को नहीं समझ पाएगा। तो श्रद्धा आवश्यक है। अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति को मेरे में और मेरे भागवत धर्म में, मेरे भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। हे अर्जुन, वरन उसे फिर से ये मृत्यु संसार में लौट कर आना होगा। तो श्रद्धा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम भक्तों के संग में भक्तों का संग करेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, और श्रद्धा बढ़ने से ही हृदय में भक्ति की भावना जागृत होती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा। एक छोटी सी कहानी है, शायद आपने सुना भी होगा। ये एक बार नारद मुनि वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे थे, और उस समय रास्ते में जाते जाते उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण अच्छी तरह से अपने नियमों का पालन करता था, अच्छी तरह से वो अपने ब्राह्मण के जो सारे क्रियाएं होते हैं वो अच्छी तरह से करता था। बहुत ही सख्त था, स्ट्रिक्ट था अपने साधना में। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, अपने मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ करना वगैरह वगैरह। जब नारद मुनि उनके पास में आए तो ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा मैं वैकुंठ में जा रहा हूं भगवान नारायण से मिलने। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप कृपा करके पूछिए भगवान नारायण से कि मेरे ये संसार से मुक्ति कभी होगी, मैं उनके धाम में लौटकर कभी जाऊंगा। तो उस समय नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं पूछ लूंगा आपके लिए। और आगे चलते चलते जब नारद मुनि आगे गए तो उनकी मुलाकात एक मोची से हुई। मोची हालांकि बहुत साधारण व्यक्ति था, गरीब था, फिर भी वो बहुत अच्छा भक्त था भगवान का, बहुत प्रेम करता था भगवान नारायण से। तो उन्होंने भी पूछा नारद मुनि से, प्रणाम नारद मुनि जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ नारायण, प्रभु नारायण का दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो आप वहां पूछ लीजिए कि मेरी मुक्ति कब होगी, संसार से कब मेरा छुटकारा हो जाएगा और मैं उनके धाम में कब लौट कर जाऊंगा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है। तो नारद मुनि जब वैकुंठ पहुंचे तो नारायण का दर्शन कर लिया, उन्होंने अपनी बातें कर ली। तो जाते जाते नारद मुनि को याद आया कि ब्राह्मण ने और मोची ने उनसे कुछ पूछने के लिए कहा था। तो जाते जाते उन्होंने भगवान नारायण से कहा, प्रभु मैं जाने के पहले दो प्रश्न करना चाहता हूं। रास्ते में ये ब्राह्मण और मोची मुझे मिले और ये पूछ रहे थे कि उनकी मुक्ति कब होगी, तो मैं क्या जवाब दूं उनको। तो भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मण को बताओ कि उसकी जो मुक्ति है वो करोड़ों जन्मों तक भी नहीं होगी। तो नारद मुनि को आश्चर्य हो गया। और फिर मैं मोची को क्या बताऊं, मोची को बताओ कि वो मेरे धाम में इस जन्म के अंत में ही चले आएगा, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो प्राण त्यागेगा तो मेरे पास चले आएगा। अच्छा ये कैसे हो सकता है, ब्राह्मण तो कितनी अच्छी साधना करता है, सब कुछ करता है, सुबह सुबह उठता है, स्नान करता है, तो मैं जो कह रहा हूं तुम बोलो। और अगर वो पूछे कि नारायण भगवान क्या कर रहे थे जब तुमने आप उनसे मिले, तो उन्हें बताना कि मैं सुई के नोक से एक हाथी को निकाल रहा था। तो नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, लेकिन कहा ठीक है प्रभु ने कहा है तो हमें मानना होगा। तो नारद मुनि वापस लौटते आए और लौटते लौटते ब्राह्मण से उनकी मीटिंग हो गई। जब मुलाकात हुई तो ब्राह्मण इंतजार कर रहे थे, आइए आइए नारद जी प्रणाम, बताइए आपका दर्शन, आपने भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया वैकुंठ में। हाँ मैंने भगवान का दर्शन किया, मेरा काम हो गया। मेरे बारे में पूछा आपने? हाँ मैंने पूछा। ये पूछा कि मैं मेरी मुक्ति कब होगी? हाँ भगवान ने बताया कि आपकी मुक्ति तो करोड़ों जन्मों तक भी नहीं होगी। तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी अच्छी तरह से क्रियाएं कर रहा हूं, मंत्रों तंत्रों में इतना विशारद हूं, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आप गए ही नहीं वैकुंठ में, बस यूं ही आप बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप वास्तव में गए हैं तो मैं आपकी परीक्षा लूंगा, आप बताइए कि भगवान नारायण क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि के पास सवाल जवाब तैयार था, क्योंकि भगवान ने कह दिया था उनको। तो उन्होंने बताया कि भगवान नारायण सुई के नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे, बड़ा मजाक करते हैं आप, अभी तो हम समझ गए कि आप गए ही नहीं वैकुंठ में, भला कोई सुई के नोक से हाथी को निकाल सकता है, ये क्या मजाक है। तो ब्राह्मण ने इस प्रकार से नारद मुनि की बात को माना नहीं। तो नारद मुनि फिर भगवान का नाम संकीर्तन करते करते आगे गए और वहां मोची के घर में गए। तो मोची के पास जब आए तो मोची ने भी उनका प्रणाम किया, दंडवत किया और उनका स्वागत करके कुछ जल अर्पण वगैरह किया। फिर बाद में पूछा कि ये बताइए कि मेरे बारे में क्या आपने पूछा? तो नारद मुनि ने बताया कि हाँ मैंने पूछा और भगवान ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति इसी जन्म के अंत में हो जाएगी। अच्छा देखो भगवान कितने कृपालु हैं कि मेरे जैसे नीच व्यक्ति को भी वो इतनी जल्दी मुक्त करा रहे हैं, वास्तव में तो मेरी मुक्ति करोड़ों जन्मों तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में भगवान इतने कृपालु हैं कि इसी जन्म में मेरी मुक्ति करा रहे हैं। देखिए दोनों कितनी उल्टी तरह से सोच रहे थे। ब्राह्मण सोच रहा था कि मेरी मुक्ति इसी जन्म में होनी चाहिए, लेकिन भगवान ने क्या कहा, करोड़ों जन्मों तक नहीं होगा। और मोची क्या सोच रहे थे कि मेरे करोड़ों जन्मों तक मुक्ति नहीं होनी चाहिए, मैं इतना पतित हूं, लेकिन भगवान क्या सोच रहे थे, ये मेरा शुद्ध भक्त है, इसी जन्म के अंत में उसे मेरे पास में ले आऊंगा। तो इस प्रकार से प्रेम के आंसू बहने लगे मोची के आंखों से और फिर आगे आगे पूछने लगे कि बताओ तो सही मेरे प्रभु वहां क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान सुई के नोक से एक हाथी को निकाल रहे थे। सुई के नोक से हाथी? और बड़े जोर जोर से हंस के आनंद से जो मोची है वो कूदने लगा, नाचने लगा, देखो मेरे प्रभु कितने महान है, कितने महान है मेरे प्रभु। तो नारद मुनि उनकी परीक्षा करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा अरे इसमें आनंद की क्या बात है, क्या तुम इस बात को विश्वास करते हो कि भगवान नारायण सुई के नोक से हाथी को निकाल रहे थे?
ये सब तो दंत कथा, ये कैसे हो सकता है, तुम विश्वास करते हो? तो मोची ने जवाब दिया, क्यों नहीं विश्वास करूंगा, भगवान के लिए तो क्या असंभव है। अगर उन्होंने एक पीपल वृक्ष के बीज में सारा वृक्ष डाल दिया है, एक छोटा बीज जो है वो बड़ा होकर इतना बड़ा वृक्ष बनता है, इसका मतलब है कि सारा वृक्ष उस बीज के अंदर है। अगर इतने सारे बड़े वृक्ष को भगवान इतने छोटे सारे बीज में डाल सकते हैं, तो हाथी को सुई के नोक से डालने में भगवान को क्या तकलीफ है। तो इस प्रकार से मोची इसको इसके बारे में सोचते सोचते भाव विभोर हो गए, और नारद मुनि ने उस समय समझ लिया कि भगवान नारायण ने मोची को मुक्ति के योग्य इसी जन्म में क्यों समझा था। तो दोनों में अंतर क्या था, मोची में और ब्राह्मण में? विश्वास, श्रद्धा। ब्राह्मण के अंदर हृदय में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन मोची के हृदय में श्रद्धा थी। हालांकि ब्राह्मण बड़ा शिक्षित था, विद्वान था, पंडित था, और अपने साधना में भी बड़ा सख्त था, तपस्वी था, सब कुछ था, लेकिन भक्त नहीं था। यह बड़ी ट्रेजेडी हो गई ब्राह्मण की। लेकिन मोची बड़ा विद्वान नहीं था, खास कोई तपस्वी नहीं था, कोई खास वैराग्य भी नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा गुण उसके अंदर क्या था, वो भगवान का भक्त था। मोची के हृदय में भगवान श्री कृष्ण या नारायण के प्रति तीव्र श्रद्धा थी, जिसकी वजह से वो जानते थे कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान के अचिंत्य शक्ति के बारे में पूर्ण श्रद्धा रहना ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमारे हृदय में यह श्रद्धा नहीं रही तो कभी भी हम भक्ति मार्ग में आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि देखो मेरी शक्तियां अनंत है, कहां तक सुनते रहोगे, फिर भी मैं थोड़े बहुत तुम्हें समझा देता हूं, तुमने पूछा है तो कुछ 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 मैं समझा देता हूं। तो इस प्रकार से इस 10वें अध्याय में और गीता के दूसरे जगह में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्यों का वर्णन किया है। उनके ऐश्वर्य क्या है, उनकी यही अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान के अचिंत्य शक्ति को हम इस संसार में, जगत में, हर जगह देख सकते हैं। ये बीज का जो उदाहरण था, ये देखिए भगवान की अचिंत्य शक्ति है। एक छोटा सा बीज कैसे इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, और ऐसा वृक्ष बनकर हजारों लाखों ऐसे ही बीज के उत्पादन करता है, ये कैसे संभव है? ये भी एक अचिंत्य शक्ति है। क्या है कोई फैक्ट्री यहां भारतवर्ष में या जगत में कहीं भी जो एक बीज को लेकर बहुत सारे बीज बनाए? देखिए, यह ऐसी कोई फैक्ट्री है जो बीज ऐसे ही बनाए? नहीं। लेकिन भगवान के फैक्ट्री में, भगवान के कारखाने में, प्रकृति में, निसर्ग में, यहां तो ऐसे करोड़ों करोड़ों वृक्ष और बीज पड़े हैं, और एक बीज में इतनी अचिंत्य शक्ति है कि वो इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है। देखिए, तो ये सब चीजें हैं, इनसे हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान के अचिंत्य शक्ति के बारे में हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और अचिंत्य शक्ति हर एक जगह है। आप एक पक्षी को देखिए, पक्षी भी आकाश में उड़ सकती है, ये भी एक प्रकार की अचिंत्य शक्ति है। भगवान ने पक्षी के शरीर में ये अचिंत्य शक्ति थोड़ी बहुत प्रदान कर दी है, जिसलिए पक्षी उड़ सकती है लेकिन हम नहीं उड़ सकते। अगर कोई कहे कि ठीक है ये उड़ने की जो शक्ति है ये हमारे लिए अचिंत्य हो सकता है लेकिन पक्षी के लिए अचिंत्य शक्ति नहीं है, तो ऐसे प्रश्न के जवाब में प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, ये अचिंत्य शक्ति ही है, लेकिन भगवान ने इस अचिंत्य शक्ति का विस्तार अलग अलग तरह से किया है, इसका वितरण अलग अलग तरह से किया है, अलग अलग शक्तियों को उन्होंने अलग अलग प्राणियों को अलग अलग मात्रा में दिया है। एक शक्ति जो उड़ने की शक्ति है, उन्होंने पक्षी योनि को दे दी है लेकिन मनुष्य योनि को ज्यादा नहीं दी है। ऐसे भी है सिद्ध लोक इत्यादि ऊपर के लोकों में, देवलोकों में जो देवता है वो भी उड़ सकते हैं आकाश में, तो उनके अंदर भी वो अचिंत्य शक्ति है। लेकिन हम जैसे साधारण व्यक्तियों में नहीं है। तो सारी शक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति है, लेकिन उसका वितरण भगवान ने अलग अलग मात्राओं में अलग अलग प्राणियों में किया है। उसी प्रकार से हम पानी में ज्यादा समय तैर नहीं सकते, हम पानी के नीचे नहीं जा सकते ज्यादा समय तक, लेकिन मच्छी है, मछली तो घंटों तक अपना सारा जीवन पानी के नीचे बिताती है। क्यों? पानी में रहने की एक अचिंत्य शक्ति है जो भगवान ने मछली को दी है लेकिन हमें नहीं दी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम संसार में जो भी कुछ विशेष बात देखते हैं ये भगवान के अचिंत्य शक्ति का ही प्राकट्य है, प्रदर्शन है। केवल भगवान अपने अचिंत्य शक्ति को अलग अलग व्यक्तियों के या अलग अलग प्राणियों के माध्यम से प्रकट कराते हैं, इतना ही अंतर है। लेकिन शक्ति तो है केवल भगवान की और किसी के नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं। भगवान के इन ऐश्वर्यों को, इन महान गुणों को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए श्रद्धा से। तर्क वितर्क से हम समझ नहीं सकते, जो वैज्ञानिक है वो तर्क से समझने का प्रयास करते हैं, वो इस ब्रह्मांड के इतिहास को देखते हैं और फिर इतिहास को देखकर सोचते हैं कि लॉजिक के हिसाब से, तर्क के हिसाब से ऐसे ये हुआ तो फिर ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, इसका मतलब ये होगा तो इसका मतलब ये होगा, और इस तरह से पीछे करते करते वो अपने सारे एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भगवान के बारे में विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकृति खुद बन गई है, बाय चांस सब कुछ हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि ये तो बहुत मूर्खता है ऐसे सोचना। अगर हम कहें जैसे एक वृक्ष को हम देखते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि वृक्ष कहां से आया, 5 साल पहले ये वृक्ष कितना था और थोड़ा छोटा था, इसके पहले क्या था और भी छोटा था, और इसके 5 साल पहले कितना छोटा था, बहुत छोटा था, और इसके 5 साल पहले कितना था, केवल बीज था। तो हम सोचेंगे कि वृक्ष बीज से आया, अच्छी बात। तो वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि सारा ब्रह्मांड जो है एक बीज से आया। लेकिन जब हम वृक्ष के बारे में सोचते हैं और बीज के बारे में सोचते हैं तो अगला प्रश्न हम क्या करेंगे, बीज कहां से आया, बीज किसने दिया, ये वैज्ञानिक नहीं जानते, ये नहीं बोलेंगे। ब्रह्मांड भी एक बीज से आया है लेकिन वो बीज किसने बनाया, कैसे आ गया, वो खुद ब खुद आ गया, क्या जमीन में बीज यूं ही आ गया, कोई देने वाला बीज प्रदाता तो होता है कोई, अहम बीज है प्रदापिता, भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदान करने वाला हूं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता, सारे योनि का बीज प्रदाता मैं हूं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लॉजिक से, तर्क से, अपने बुद्धि से, मन से हम अपनी बुद्धि लगाकर सोच सकते हैं कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, और बात को पीछे पीछे ढकेलते जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान तक नहीं पहुंचे तो हमारा सारा विज्ञान व्यर्थ है, शून्य है। जिस प्रकार से अगर हमने इतना समझ लिया कि वृक्ष बीज से आता है लेकिन बीज भगवान ने बनाया है, अगर ये हम नहीं स्वीकार करते तो हमारा ज्ञान अधूरा रहता है। तो उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिक भी बड़ा भूल कर रहे हैं, भगवान को अपने विज्ञान से हटाकर व्यक्तियां कैसे काम करती हैं। कभी कभी भगवान एक अचिंत्य शक्ति को प्रकट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी कम मात्रा में करते हैं तो कभी ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो भगवान की इच्छा के अनुसार ये अनंत कोटि शक्तियां आपस में मिलजुल कर ये सारे सुंदर ऐश्वर्यशाली सृष्टि का निर्माण करती हैं। तो ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम, ये सब क्या है, ये केवल भगवान के अचिंत्य शक्तियों का एक प्रदर्शन है। भगवान के जो नाना अवतार हैं, ये सारे अलग अलग रूप हैं, ये क्या हैं, केवल भगवान के अचिंत्य शक्तियों का प्रदर्शन है। तो इसलिए वैज्ञानिक भगवान को विज्ञान से के हटाने से बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसलिए हमें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के हमें पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भी अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, बंधुओं को, मित्रों को समझाना चाहिए, जो लोग नास्तिकवाद का शरण लेते हैं, ऐसे लॉजिक से उनको मनाना चाहिए कि देखो भगवान है, ये उनकी ऐश्वर्य शक्ति देखो, सब जगह अचिंत्य शक्ति देखो कितनी महान है। हमारे शरीर से भी हम देखते हैं कि कितने सारे केमिकल रसायनों का उत्पादन होता है। हमारे पेट में पचन के लिए एसिड तैयार होता है और नाना प्रकार के शरीर में अलग अलग प्रकार केमिकल वगैरह बनते हैं। लेकिन जब आत्मा ये शरीर से चले जाएगा, क्या यह रसायनों का उत्पादन होता रहेगा शरीर में? नहीं, यह शरीर भी एक रसायन उत्पादन केंद्र है, एक फैक्ट्री है, कारखाना है। इतने सारे केमिकल्स यहां इनका उत्पादन हो रहा है, लेकिन जब आत्मा यहां से चली जाती है तो उत्पादन बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीव से, प्राण से ही, आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों का कहना क्या है? वैज्ञानिक भगवान में नहीं मानते हैं, ना तो आत्मा को मानते हैं। वो कहते हैं कि जीवन मृत चीजों से खुद ब खुद उत्पन्न हो गया, वो उनकी धारणा है। और आजकल हमारे स्कूल कॉलेज में भी यही सिखाते हैं। डार्विन का नाम सुना है आपने? स्कूल में पढ़ा होगा डार्विन के बारे में आप सबने। ये डार्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि वास्तव में ये जीवन है, ये थोड़े बहुत अणु से वगैरह उत्पन्न हो गया, बाय चांस हो गया, ना तो कोई आत्मा है ना तो कोई भगवान है। लेकिन कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि आत्मा की वजह से इतने सारे केमिकल्स आ रहे हैं, जीवन आ रहा है, लेकिन क्या हमारे पास एक भी उदाहरण है जिसमें हम कह सकते हैं कि केवल केमिकल से, केवल मृत चीजों से जीवन आ सकता है? एक भी उदाहरण है ऐसे? नहीं है। फिर हम ये क्यों माने कि आत्मा नहीं है? जब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं तो इतना अच्छी तरह से समझाते हैं कि आत्मा की वजह से ही शरीर जीवित होता है और आत्मा की वजह से सारे रसायनों का उत्पादन होता है। तो अगर एक साधारण कण मात्र जीवात्मा इतने केमिकल रसायन बना सकता है, तो भगवान जो कि विभू हैं, अनंत हैं, जिनके अचिंत्य शक्तियां हैं, वो कितने सारे क्या रसायन बना सकते हैं, कितने सारे केमिकल्स बना सकते हैं वो? तो सारा भंडार केमिकल का जो भौतिक ब्रह्मांड में है, वो तो भगवान ने ही बनाया है। हमारे शरीर से हम पानी का उत्पादन करा सकते हैं, पसीना आता है वगैरह। तो अगर हमारे शरीर से भी इतना पसीना आ सकता है, जल बाहर आ सकता है, तो भगवान से कितना आता होगा? तो शास्त्रों में बताया जाता है कि वास्तव में ये जो बड़े बड़े सागर हैं, ये भगवान का पसीना है। तो अगर हम एक साधारण जीव, हमारे शरीर में इतना पसीना आ सकता है, तो भगवान क्यों नहीं पसीने का उत्पादन कर सकते और सागरों को क्यों नहीं भर सकते, जब वो विभू है और हम अणु हैं? तो ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो इस तरह से भगवान के अचिंत्य शक्तियों के बारे में हमें श्रद्धा रहनी चाहिए। और इस प्रकार से गीता में जो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, इसको श्रद्धा पर स्वीकार करना चाहिए और भगवान के ऐश्वर्यों को, भगवान के गुणों को, भगवान के लीलाओं को, भगवान के उपदेश को जहां तक हो सके हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे ही विषयों में हमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे विषयों में रमण करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है और हम भगवान के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये अचिंत्य शक्ति को समझने का तरीका यही है कि हम भगवान के भक्तों के संग में आएं और इनके बारे में श्रवण करते रहें। इसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। ये साधारण वाणी नहीं है, ये आध्यात्मिक दिव्य वाणी है। इसका श्रवण करके हमें ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगी और फिर अंतकाल में जब मृत्यु का समय आएगा तो श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके हम शरीर को त्याग सकते हैं और फिर भगवान के धाम में लौटकर जा सकते हैं। यही हमारे जीवन। और सारे प्राणियों के भ्रमण मेरे नियंत्रण में चल रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी एक अवधूत के रूप में भ्रमण कर रहे थे सारे संसार का, जगत का। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंदर ही अंदर से उनका मार्गदर्शन ऐसे कराया, उनके पैरों को ऐसे हिलाया कि वो सीधे उसी स्थल में आए जहां परीक्षित महाराज उपवास करने बैठ गए थे। और सारे उपस्थित ऋषि मुनिगणों ने कहा कि हाँ, सुखदेव जी को अभी भागवत का प्रवचन देना चाहिए। तो उस सत्संग में, उस सभा में कई तरह के लोग बैठे थे। कोई बड़े बड़े लंबे लंबे दाढ़ी वाले योगी थे, जो कि अपने सर पे खड़े होते थे, हिमालय में ठंडी में यूं ही बैठते थे ध्यान करने के लिए। कोई वैरागी थे जो इधर उधर घूमते थे जंगलों में। कोई त्यागी थे अलग प्रकार के, कोई निराकारवादी थे, कोई योगी थे, और कोई तपस्वी थे, कोई भक्त थे, अलग अलग श्रेणी। है हमारे जीवन की परिपूर्णता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई किसी प्रश्न है? कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे